पहला कुरिन्थियों 2:6-9 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्यों के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। प्रिय श्रोताओं, क्रूस के संदेश का यह 8वां सत्र है। पिछले भाग में मैंने आपको समझाया था कि क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उत्पन्न किया। परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाया और अदन की वाटिका में रखा, ताकि मनुष्य भले और बुरे का तुलनात्मक अनुभव प्राप्त कर सके। और यह ज्ञान का वृक्ष जीवन के वृक्ष के साथ रखा गया था। परमेश्वर ने इन दो प्रकार के पेड़ों को, जिनमें तुलनात्मक अंतर था, उत्पन्न किया और आदम को दोनों वृक्षों के बारे में समझाया। जीवन का वृक्ष तो अनंत जीवन देता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानना या ना मानना, ये आदम की स्वतंत्र इच्छा पर था, ताकि वह अपने आप चुनाव कर सके। क्योंकि आदम को पापों और मृत्यु का अनुभव नहीं था, इसलिए वह पूरी तरह से परमेश्वर के समझाए जाने को अपने हृदय में ना रख सका। इसलिए अंत में वह शैतान के द्वारा धोखे में आ गया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खा लिया। कुछ लोग पूछते हैं, आदम कैसे पाप कर सकता है जबकि उसमें तो कोई पाप नहीं था? लेकिन ऐसा नहीं है कि आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से इसलिए खाया हो कि उसके अंदर शुरू से ही पाप था। वह पेड़ से खा सकता था इसलिए नहीं कि उसके अंदर कोई बुराई थी, परंतु उसके पास स्वतंत्र इच्छा थी बुराई को ग्रहण करने की। इसीलिए स्वतंत्र इच्छा के अनुसार उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पेड़ से खाया, और ऐसा करने के द्वारा पाप अस्तित्व में आया और आदम ने जाना कि पाप क्या है। अर्थात आदम जो केवल अच्छी बातों को ही जानता था, अब वह जान पाया कि बुराई और शारीरिकता क्या होती है। आज जब हम लोगों को पाप में दागे होते हुए देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आदम में बुराई कैसे आई। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है, तो शुरू से ही वह दूसरे बच्चे को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब तक कि दूसरों को मारना उसने अपनी आदत न बना दिया, तो उसे ग्रहण करने की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले वह किसी दूसरे व्यक्ति को मारते हुए देखता है, फिर वह उस व्यक्ति का अनुसरण करता है, और जब वह स्वयं दूसरे बच्चे को मारता है, तो जिसे मारा गया वो रोने लगता है और उसे लगता है कि ये तो बड़ी मजेदार बात है, इसलिए वह फिर से दोहराता है। यदि वह उसे दोहराता रहे तो वह उसकी पूरी तरह से आदत बन जाती है, और अब वह फिर आदत के साथ दूसरे बच्चे को मारता है। शराब पीने के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि शराब से आपके शरीर को कोई लाभ नहीं पहुंचता, लेकिन अगर आप एक बार पीते हैं तो फिर आप दो बार पीते हैं, और उसके बाद आप एक ऐसे स्तर पर भी पहुंच सकते हैं जहां आप अपने आप को नियंत्रण न कर सकें, और उसके बहुत से दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। और उनके साथ भी ऐसा ही है जो बुरी बातें बोलते हैं, और झूठ बोलने वाले के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप एक या दो बार झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं दूसरों को, हो सकता है आपको मजेदार लगे, उसके बाद फिर से अपने लाभ के लिए आप झूठ बोलते हैं, फिर वो आपकी आदत बनती है, फिर आप एहसास तक नहीं कर पाते कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए यदि आपसे पूछता है कि आप झूठ मत बोलिए, तो आप वापस पूछते हैं कि मैंने कब झूठ बोला। प्रिय श्रोताओं, मनुष्यों का शाम के प्रलोभन को ग्रहण कर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने का परिणाम क्या हुआ? जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, तुम निश्चय मर जाओगे, उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा, अर्थात उनकी आत्मा मर चुकी थी। इसलिए परमेश्वर के साथ उनका संपर्क टूट चुका था और वे शत्रु, दुष्ट और शैतान के गुलाम बन चुके थे। रोमियो 6:16 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु। यदि आप पाप की आज्ञा मानते हैं, तो आप शत्रु, दुष्ट की आज्ञा का पालन करते हैं, जो कि पाप का शासक है, इसलिए उसका परिणाम मृत्यु है, जो कि नर्क है, या चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। यदि हम परमेश्वर और प्रभु की आज्ञा माने, तो अंत में हम धार्मिकता को पहुंचेंगे और पवित्र बन जाएंगे। धार्मिकता को पहुंचकर हम स्वर्ग के अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जैसा कि कहा गया, आदम ने पाप की आज्ञा को माना और इसलिए वह शत्रु, दुष्ट का दास बन गया, जो कि अंधकार की शक्ति का शासक है। ऐसा करके आदम ने अपना सारा अधिकार शत्रु, दुष्ट को सौंप दिया। उत्पत्ति एक अध्याय 28 पद कहता है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और पृथ्वी की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। जैसा कि कहा गया, पहले मनुष्य आदम के पास सब वस्तुओं को वश में करने का अधिकार था, लेकिन क्योंकि आदम शत्रु दुष्ट का दास बन चुका था, इसीलिए सृष्टि का स्वामी होने के अधिकार और महिमा शत्रु दुष्ट को सौंप दिए गए थे। हम इस सत्य को लुका 4 अध्याय 6 में पा सकते हैं। शैतान ने यीशु से कहा, जब वह उसे संसार के राज्य को दिखा रहा था, यह सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे दिया गया है और मैं इसे जिसे चाहूं उसे देता हूं। परमेश्वर ने यह अधिकार आरंभ से शैतान को नहीं दिया था, लेकिन किसी और ने इसे शैतान को सौंप दिया था। मान लीजिए आपने यह किताब मुझे दी है, अब ये मेरी है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं, क्योंकि अब ये मेरी है। इसलिए यहां लिखा है, क्योंकि यह मुझे दिया है और मैं जिसे चाहूं उसे देता हूं। शैतान ऐसा कहकर यीशु की परीक्षा कर रहा था कि यदि यीशु उसके सामने दंडवत करें तो वह अपना सारा अधिकार यीशु को दे देगा। शैतान के पास आरंभ से ये सब अधिकार नहीं था इस संसार पर राज्य करने का और वैभव का, लेकिन ये उसे किसी के द्वारा दिया गया, अर्थात आदम के द्वारा ये उसे सौंप दिया गया था। परमेश्वर ने ये अधिकार आदम को दिया था और आदम ने इसे शैतान को दे दिया। शत्रु दुष्ट, जिसने सारी सृष्टि को वश में करने का अधिकार पा लिया था, मानव जाति को अधिक से अधिक पापों और बुराइयों से दागे बना दिया, क्योंकि वे आदम की आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा पाप के दास बन चुके थे। जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गई, मनुष्यों का हृदय ज्यादा से ज्यादा बुरा होता चला गया और संसार ज्यादा से ज्यादा पापों से भर गया। उनके लिए जो पाप में ऐसे रहते हैं, शत्रु दुष्ट गरीबी, विपदाएं, आंसू, दुख और दर्द लाता है और अंत में उन्हें नर्क की ओर ले जाता है, अनंत काल की मृत्यु के लिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, संसार अधिक से अधिक पापों से भरता जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, अब मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें शत्रु दुष्ट का जीवन भर दास बनकर रहना पड़ेगा और अंत में नर्क में जाना पड़ेगा? यदि परमेश्वर मनुष्य को नर्क में ही गिरने देता तो ये सब जानते हुए वह मनुष्य की रचना पहले से ही नहीं करता और ना ही भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तुलनात्मक होने के लिए लगाता। मनुष्यों को रचने में परमेश्वर की इच्छा उन्हें इस संसार में जोते जाने और तुलनात्मकता का अनुभव लेने के बाद अनंत स्वर्ग राज्य में अगुवाई करने की है। लेकिन यदि भी हम भले और बुरे का तुलनात्मक अनुभव प्राप्त भी कर लें, फिर भी हम पापों के गुलाम होने के कारण स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पहले कि परमेश्वर मानव जाति की खेती करने की योजना बनाता, वह पहले से ही जानता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएगा। इसीलिए उसने आरंभ से ही मानव जाति को, जो पाप में गिर जाएगी, बचाने का मार्ग तैयार कर लिया था। वह मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मैं आशा करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप साफ साफ यीशु मसीह के बारे में समझ जाएंगे, जो उद्धार का मार्ग है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रभु को ग्रहण करेंगे और स्वर्ग राज्य को प्राप्त करेंगे। प्रिय श्रोताओं, मानव जाति जो पापों के कारण पापी बन चुकी थी, कैसे उद्धार प्राप्त कर सकती है? क्योंकि परमेश्वर तो कुछ भी करने में सक्षम है, तो क्या वह सब पापियों को बिना किसी शर्त के माफ कर सकता है, शत्रु का नाश कर सकता है और हमें उद्धार दे सकता है? यदि ऐसा है तो मनुष्यों की खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और उसी समय वह न्यायी परमेश्वर भी है। वह सब कुछ आत्मिक क्षेत्र की व्यवस्था के नियम के अनुसार करता है। पापियों को क्षमा करना और उन्हें उद्धार देना अवश्य ही ठीक ठीक न्याय के अनुसार होना चाहिए। मनुष्य जाति को न्याय के अंतर्गत बचाने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। हमारे स्थान पर यीशु को हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्षमा दी और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाया। यदि परमेश्वर प्रेमी हो और उसमें कोई न्याय ना हो, तो इस संसार के सभी क्रम ढह जाएंगे, कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होगी। क्या होगा यदि परमेश्वर के पास न्याय ना हो? तो मैं आपको पंक्ति में खड़ा करके आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। अपना हाथ आपके ऊपर रखकर मैं आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप 1000, 5000 यहाँ तक कि $10,000 से भी कहीं ज्यादा दशमांश दो, तो फिर आशीष आ जाएगी। लेकिन क्या यह परमेश्वर का न्याय होगा? यदि आप बीमार हैं, मैं आपको लाइन में खड़ा करके आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ चंगाई के लिए, और अगर आप सबके सब चंगे हो जाए तो क्या वो प्रेम है? क्या वो न्याय है? परमेश्वर आपको आशीषें तब देते हैं जब आप अपना पात्र आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। वो आपको चंगा करता है जब आपकी पापों की दीवारें टूट जाती हैं और आपका विश्वास पर्याप्त होता है कि आप चंगाई प्राप्त करें। और फिर जब आप प्रार्थना ग्रहण करते हैं अपने विश्वास के अनुसार, परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है, वो न्याय है। और ये मनुष्य खेती भी है, यदि आप जैसा चाहे वैसे आशीष प्राप्त करें और आप केवल प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाएं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई न्याय है ही नहीं, तो फिर हर कोई इसी कलिसिया में आ जाएगा, प्रत्येक प्रार्थना और आशीष प्राप्त करेगा। और यदि इस तरह से कोई स्वर्ग में चला जाए, तो परमेश्वर के लिए मनुष्यों की खेती करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वह सच्चा पुत्र और पुत्रियां प्राप्त नहीं कर सकता, वह सच्ची संतान प्राप्त नहीं कर सकता जिसके पास सच्चा विश्वास हो, जिसने बुराई को दूर कर दिया हो और पवित्र बन चुका हो। जैसे कि कहा गया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्रूस पर चढ़कर यीशु ने मृत्यु के दंड को ले लिया और पापियों के लिए पाप की मजदूरी को चुका दिया। जब हम इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। यीशु के लहू द्वारा क्षमा प्राप्त कर हम मृत्यु के दंड से बच सकते हैं। और फिर शत्रु दुष्ट उन्हें जो प्रभु को ग्रहण करके परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, उन पर अपना अधिकार नहीं रख सकता। तब उन्हें विपत्तियों में, परीक्षाओं में या संकटों में रहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन परमेश्वर के संतान के रूप में आशीष में वे रहते हैं। लेकिन वे जो इस सत्य पर विश्वास नहीं करते, वे पूछते हैं, क्यों हम उद्धार केवल यीशु मसीह में विश्वास करके प्राप्त करते हैं? वे जिन्हें इस प्रकार का संदेह है, तो कृपया आप सावधानी से सुने। वे कहते हैं, बहुत से धर्म है, क्यों केवल यीशु ही एक मात्र उद्धार करता है और क्यों केवल मसीहियत में ही उद्धार है? लेकिन हमें साफ साफ जानना चाहिए, प्रेरितों के काम 4:12 कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। परमेश्वर कहता है, यीशु के नाम को छोड़ कोई और नाम हमें नहीं दिया गया है, कोई नहीं, केवल यीशु ही उद्धारकर्ता बन सकता है। और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना हम में से कोई भी उद्धार पा नहीं सकता। तो फिर क्यों ऐसा है कि केवल यीशु ही हमारा उद्धार करता है? क्योंकि ऐसा आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार है। ठीक जैसे इस संसार में नियम है, वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी नियम है। मनुष्यों का मरना, क्षमा प्राप्त करना, उद्धार को प्राप्त करना, सब आत्मिक क्षेत्र के नियमों के अनुसार किया जाता है। आदम के पतन के बाद क्या कारण था कि मनुष्य जाति के लिए मृत्यु ठहरा दी गई? क्योंकि आत्मिक क्षेत्र का नियम यह आज्ञा देता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम शत्रु दुष्ट का दास बन गया जब उसने पाप कर दिया, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र का नियम यह आदेश देता है कि जब तुम किसी की आज्ञा मानते हो तो उसके दास हो जाते हो। ठीक ऐसे ही मनुष्यों का मृत्यु के दंड से छुटकारा पाना और उद्धार प्राप्त करना भी आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार होना चाहिए। तो कैसे मानव जाति जो कि पापी है क्षमा और उद्धार प्राप्त कर सकती है? हम इसका जवाब बाइबल में प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में एक नियम है जिसे भूमि छुड़ाने की व्यवस्था कहते हैं। लेवे व्यवस्था 25:23-25 कहता है, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है अर्थात परमेश्वर की, और उसमें तुम परदेशी और बाहरी हो गए। हमारा वास्तविक घर स्वर्ग का राज्य है, जहाँ हमारा पिता वास करता है। हम इस पृथ्वी पर परदेशी और प्रवासी हैं, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट का हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। इसराइल में भूमि को बेचने और खरीदने का यही नियम था। ये न केवल वास्तविक भौतिक भूमि पर लागू होता था, बल्कि मनुष्यों पर भी जो कि मिट्टी से बनाए गए हैं। परमेश्वर ने कनान की भूमि को इसराइल के लोगों के लिए उनके कबीलों, परिवारों के अनुसार बांट दिया था, लेकिन भूमि वास्तव में परमेश्वर की है। इसलिए लोग अपनी भूमि जो उन्होंने प्राप्त की थी बेच नहीं सकते थे। यदि उन्हें गरीबी होने के कारण भूमि को बेच देना पड़ता था, तो नजदीकी कुटुंबी उस भूमि की कीमत को चुकाकर उसे छुड़ा सकता था। भूमि को छुड़ाने की इस व्यवस्था में मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को दर्शाया गया है जो कि पापी बन गए थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये भूमि जो परमेश्वर की है, उसके छुटकारे की व्यवस्था सीधे मनुष्य पर लागू होती है जो कि भूमि की मिट्टी से बनाए गए है। उत्पत्ति 3:19 कहता है, तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अर्थात आदम अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उसी में से तो निकाला गया है, तो मिट्टी तो है, अतः फिर मिट्टी में मिल जाएगा। उत्पत्ति 3:23 कहता है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया कि उसी भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। ऐसे ही मती 13:8 में यीशु ने मनुष्यों की हृदय की तुलना भूमि से की है, अर्थात मिट्टी से। परमेश्वर ने मनुष्यों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, विश्रापित किए गए, और पृथ्वी पर निकाल दिए गए, क्योंकि ये भूमि की मिट्टी से रचे गए थे। वे इस भूमि पर खेती बाड़ी करने के लिए निकाल दिए गए, जिसमें से वे बनाए गए थे। लेकिन अनेकों लोग, यहाँ तक कि धर्मशास्त्री भी इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि अदन की वाटिका कहीं मध्य पूर्व में मौजूद होगी। वे अभी भी रेगिस्तान में खोज कर रहे हैं। वे विश्वास करते हैं कि यह वहीं पर कहीं होगी। वे अभी भी गलत स्थान में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे इसे ढूंढ नहीं सकते। इसलिए वे कहते हैं कि बाइबल में ये अभिलेख एक काल्पनिक कथा है, लेकिन अदन की वाटिका अभी भी मौजूद है। क्यों? परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, उसने करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया, और ये अनंत काल की वस्तु है। फिर ये कहाँ है? आप इसे अच्छे से जानते हैं। आपने उत्पत्ति में दिए हुए उपदेशों को सुना है, और आप में से कुछों ने अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा उसे देखा भी है। इस प्रकार से दो प्रकार के नियमों का आपस में एक दूसरे के साथ सीधा संबंध है। एक नियम तो मनुष्यों के लिए जो भूमि की मिट्टी से रचे गए थे, उनका शत्रु दुष्ट के हाथों में चला जाना और वापस दोबारा परमेश्वर के पास आना है। और दूसरा नियम भूमि को छुड़ाने का नियम है, जो एक बार बेच दी गई हो। जैसे इसराइल की सारी भूमि परमेश्वर की है, वैसे ही आदम पर सारा अधिकार परमेश्वर का है। इसलिए इसे हमेशा के लिए बेचा नहीं जा सकता था। आदम को परमेश्वर के द्वारा रचा गया था, और उसके सब वंशज जो आदम और हवा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि जीवन का बीज परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। इसलिए उन्हें हमेशा के लिए बेचा नहीं जा सकता था। इसलिए यदि जो कोई खरीदने के योग्य है आता है, तो वह उसे वापस खरीद सकता है। हालांकि आदम ने पाप किया और शैतान का दास बन गया और अपना सारा अधिकार शैतान को सौंप दिया। लेकिन फिर भी यदि भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार वहाँ यदि कोई छुड़ाने के योग्य होता, तो शत्रु दुष्ट को उस अधिकार को वापस देना पड़ता, क्योंकि शत्रु शैतान इसे जानता था। इसलिए वह हमेशा इसकी खोज में था कि उद्धारकर्ता कौन है। इसलिए जब किसी ने भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, तो शैतान ने उन लोगों को मारने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि कहीं ये वही तो नहीं जो भूमि को छुड़ाने के योग्य है, अर्थात उद्धारकर्ता। जब प्रभु का जन्म हुआ, तो इसे पूर्व के ज्योतिषों द्वारा बताया गया, तो शैतान ने राजा को दो दो वर्ष के लड़कों को मार देने के लिए उकसाया, क्योंकि शत्रु शैतान जानता है कि भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार वह जो योग्य है किसी न किसी समय अवश्य आएगा। वह हमेशा से उद्धारकर्ता की खोज में था और उसे मारने की कोशिश की। इसलिए शैतान ने हमेशा उन लोगों को परमेश्वर से जो प्रेम रखते थे, प्रचार करते थे और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते थे, मारने की कोशिश की 2000 साल पहले, और आज भी यह ऐसा ही है। हालांकि उद्धारकर्ता आ चुका है, लेकिन लोगों को उद्धार प्राप्त करने से रोकने के लिए शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों को मारने की कोशिश करता रहा है। यहाँ किस बात की जरूरत है? एक ऐसे व्यक्ति की जो आदम के जीवन को छुड़ाने की योग्य हो, क्योंकि आदम का जीवन उसके पापों की कीमत के निमित्त बिक चुका था। वह व्यक्ति मानव जाति का उद्धारकर्ता बन सकता है। परमेश्वर जिसने सच्ची संतान प्राप्त करने के लिए मानव जाति की खेती की योजना बनाई, उसने उद्धारकर्ता की भी योजना बनाई जो आदम को छुटकारा देगा, क्योंकि वो जानता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएगा, और वहाँ एक व्यक्ति को उद्धारकर्ता के रूप में होना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया जो योग्य था, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। भूमि की छुटकारे की व्यवस्था के अनुसार केवल यीशु ही ऐसे थे जो मानव जाति को बचाने के योग्य थे। सृष्टि की रचना के समय से वह ही एक है। भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार उद्धारकर्ता की क्या योग्यताएं हैं? वे चार हैं। आइए एक एक करके अब से हम उन्हें देखें। उद्धारकर्ता की पहली शर्त यह है कि वह मनुष्य होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये शर्त तो मैं भी पूरी करता हूँ, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। हाँ, आप ठीक है, वह मनुष्य होना चाहिए। आप भी मनुष्य है, कोई कुत्ता, सुअर या कोई जानवर नहीं है। सो उद्धारकर्ता बनने की चार शर्तों में से आपने पहली शर्त पूरी कर ली। जैसा भूमि छुड़ाने की विधि में लय व्यवस्था 25 अध्याय 25 पद में वर्णन किया गया है, यहाँ पर लिखा है, यदि तुम्हारा भाई ऐसा दरिद्र हो जाए कि उसे अपने निज भूमि में से कुछ बेचना पड़े, तो उसका जो सबसे निकट कुटुंबी हो, वह आकर उस भूमि को जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले। जो व्यक्ति उस बेची हुई भूमि को छुड़ा सकता है, वह निकट संबंधी होना चाहिए। वैसे ही मनुष्य को छुड़ाने के लिए जो पाप के कारण शत्रु दुष्ट और शैतान को बेचा जा चुका था, उसको छुड़ाने वाला भी आदम का संबंधी होना चाहिए। आदम का संबंधी होने का मतलब है ऐसा प्राणी जिसके पास आत्मा, प्राण और शरीर आदम के समान हो। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 21 से 22 पद कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं, उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्योंकि एक मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो मृतकों का पुनरुत्थान भी एक मनुष्य के द्वारा आया, जिसका अर्थ यह है कि उद्धारकर्ता भी मनुष्य होना चाहिए। इसीलिए उद्धारकर्ता की एक शर्त यह है कि वह मनुष्य होना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य के पापों की कीमत को चुकाने के लिए छुड़ाने वाला मनुष्य होना चाहिए। इसीलिए उद्धारकर्ता यीशु को भी मनुष्य ही होना था, लेकिन वह तो परमेश्वर का पुत्र है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर से विभाजित हुआ है। उसके पास ईश्वरत्व का सामर्थ्य, अधिकार और महिमा है। तो यह यीशु कैसे मनुष्य का कुटुंबी हो सकता है? यूहन्ना 1:14 का पहला हिस्सा कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। यूहन्ना 1:1 का दूसरा भाग कहता है, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और ये वचन परमेश्वर है। इसका अर्थ परमेश्वर जो वचन है, जिसने शारीरिक शरीर को मांस और हड्डियों के साथ पहन लिया और इस पृथ्वी पर आ गया। क्योंकि उद्धारकर्ता को मनुष्य होना था, इसलिए हमारे प्रभु के पास आत्मा, प्राण और शरीर था। इसलिए जब वह सलीब पर मरा, तो उसने कैसे प्रार्थना की? उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूँ। उसके पास आत्मा, प्राण और शरीर हमारे समान था। यद्यपि वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया, फिर भी वह हमारा कुटुंबी हो सकता है। क्या आप इसे समझ पाए हैं? इसका सीधा संबंध आपके जीवन से है, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए और किसी के द्वारा धोखा नहीं खाना चाहिए। यीशु मसीह मनुष्यों का शरीर धारण कर उत्पन्न हुआ और एक मनुष्य की तरह मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाने के लिए उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह मनुष्य था, उसे सोना पड़ता था, भूख और प्यास और आनंद और दुख वह महसूस करता था। इसे हम बाइबल में देख सकते हैं, यहाँ तक कि ऐतिहासिक तौर पर भी। क्या हमारे पास साफ प्रमाण नहीं है कि यीशु मनुष्य के तौर पर इस धरती पर आया? हाँ, हमारे पास है। आपके घरों में है ये, आपके बेडरूम में इसके प्रमाण है। वो ये है कि मानव जाति का इतिहास दो भागों में बंटा हुआ है और यीशु के जन्म का समय उसका केंद्र बिंदु है। उद्धारकर्ता यीशु, जिसमें हम विश्वास करते हैं, जो कि वचन है, इस पृथ्वी पर शरीर में आया और हमारे बीच में निवास किया, इतिहास इस सत्य का गवाह है। यहाँ तक कि अविश्वासियों के पास भी कैलेंडर्स है। 2017 का मतलब है 2017 साल बीत चुके हैं जब यीशु इस संसार में आया था। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि आप विश्वास करो या ना करो, ये एक तथ्य है। केवल देखने के द्वारा कि एक बड़ा ऐतिहासिक चिन्ह यीशु के जन्म का है, हम साफ साफ देख सकते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आया। उसने छुड़ाने वाली पहली शर्त को पूरा किया, और दूसरी शर्त उद्धारकर्ता की यह है कि वह आदम का वंशज नहीं होना चाहिए। आदम के सब वंशज पापी है। स्वयं पापी होने के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पापों को नहीं मिटा सकता। उदाहरण के लिए आइए माने कि दो भाई है। छोटे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, जिसके कारण उसे जेल जाना है। अगर उसके बड़ा भाई उसका कर्ज चुकाता है, तो उसे जेल नहीं जाना होगा। लेकिन अगर बड़े भाई के ऊपर भी कर्ज हो और उसे भी जेल जाना हो, तो वह छोटे भाई के कर्ज को नहीं चुका सकता, चाहे वह कितना भी चुकाना क्यों ना चाहे। यदि भी कोई अपने कुटुंब की बेची हुई भूमि को छुड़ाना चाहे, लेकिन यदि वह स्वयं गरीब हो और अपनी भूमि बेच चुका हो, तो वह दूसरे की भूमि छुड़ाने की दशा में नहीं है। इसी तरह उद्धारकर्ता भी एक मनुष्य होना चाहिए जो मनुष्य को उनके पापों से छुड़ा सकता है, लेकिन ठीक उसी समय वह पापी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आदम ने पाप किया और मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ा, इसलिए एक पापी दूसरों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। इसलिए उद्धारकर्ता आदम का वंशज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदम के सब वंशज पापी है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जाति या देश से हैं। यदि आप दादाओं के दादाओं तक पीछे लौटते जाएं, तो अंत में सबका एक ही पूर्वज होगा, और वह है आदम। सो मनुष्यों में कोई नहीं था जो उद्धारकर्ता होने के लिए दूसरी शर्त को पूरी कर पाता, लेकिन केवल यीशु, जो एक मनुष्य होकर इस संसार में आया, वह आदम का वंशज नहीं था, यद्यपि वह मनुष्य था। इस प्रकार यीशु मसीह उद्धारकर्ता की दूसरी शर्त को पूरा करता है। इसलिए केवल यीशु ही है जो आदम का वंशज नहीं है, जो इस धरती पर देह में होकर आया, हालांकि वह एक मनुष्य है। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि आदम के सब वंशज पापी है, और क्यों ऐसा है कि यीशु आदम का वंशज नहीं है, हालांकि वह एक मनुष्य है? इसके विषय में अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार केवल यीशु के पास ही उद्धारकर्ता बनने की योग्यताएं हैं। मैं आशा करता हूं कि आप एहसास करेगी कि क्यों यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता है आने वाले और आज के संदेश के द्वारा। ना केवल जब आप अंगीकार करते कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन जब आप वास्तव में समझते हैं और विश्वास करते हैं कि क्यों केवल यीशु ही उद्धारकर्ता है, तब आप वास्तव में आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस जवाब को साफ साफ समझ लेना चाहिए कि क्यों उद्धार केवल मसीहत में ही यीशु के द्वारा पाया जाता है। तो आप भी हमारे प्रभु के नाम पर भरोसा रखकर एक सामर्थ्य मसीह जीवन की अगुवाई कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को समझने के द्वारा और अपने हृदय में दृढ़ विश्वास करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी परमेश्वर की उद्धार पाई हुई संतान के रूप में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी सारंगे आबाजी 하나님, इस 시간 기도받는 전 세계 하나님의 자녀들과 GCN 시청자들에게 시공간을 초월하여 친히 안수하여 주옵소서. 믿어지는 믿음을 주옵시고 모든 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명합니다. 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 모든 유행성 질병, 불치병, 난치병과 풍토병, 신종 질병들도 모든 암과 에이즈, 백혈병, 뇌졸중, 심근경색을 비롯한 심장병, 폐병, 위장병, 각종 부인병, 고혈압, 저혈압, 당뇨, 피부병, 화상과 모든 염증, 사고, 후유증, 감기, 몸살, 독감, 말라리아, 갑상선 질환도 깨끗함을 받을지니라. 관절염, 디스크도 온전함을 입으며 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 마음에서 어둠이 물러가고 기쁨과 평안이 말지어다. 소아마비, 중풍, 마비된 것 다 풀어지고 안진뱅이는 걷고 뛸지어다. 소경은 눈을 뜨고 휘먹거리는 두르며 벙어리는 말할지어다. 잉태의 축복을 주시며 부러진 뼈도 붙여주시고 죽은 자가 살아나며 죽은 신경과 세포가 살아나게 하옵소서. 각종 약물과 독극물 중독도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서. 모든 시험 환난도 다 물리쳐 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이 여임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주옵시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 지와 명철을 주시고 성령의 감동감과 충만함을 입게 하옵소서. 사명감당 잘하게 하시고 교회들이 부흥케 하시며 먹으나 입으나 마시나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 가정들이 복음화되게 하여 주옵소서. 성령의 분담으로 천군 천사와 주님의 불꽃 같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정일터 사업터를 사고와 재앙으로부터 지켜주옵소서. 마음에서 온 간구와 기도에도 응답하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.